ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस निर्धारित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और राजधानी में आज चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी, लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस निर्धारित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को आज मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों द्वारा फीस में बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की फीस निर्धारित करने वाले इस विधेयक के मसौदे को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस फैसले से दिल्ली के छात्रों और उनके परिजनों की फीस को लेकर चिंता दूर होगी।
ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की, तो ये दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है।
यह विधेयक दिल्ली के सभी 1600 से अधिक स्कूलों के लिए लाया गया है, जिसमें सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूल शामिल हैं। इस विधेयक के दिल्ली विधानसभा से पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा। भविष्य में दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इस विधेयक के हिसाब से फीस निर्धारित करनी होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर विद्यार्थी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान सुगम बना रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सरकार, शिक्षा, समुदाय, उद्योग और नवोन्मेषक समुदाय के नेताओं के पहले रणनीतिक सम्मेलन युग्म को संबोधित करते हुए ये बात कही।
ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत के विश्वविद्यालय परिसर गतिशील केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन विश्व स्तरीय ज्ञान को हर विद्यार्थी के लिए सुगम बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की क्षमता और सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि IIT और एम्स के सहयोग से कई मेडिटेक पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार मेक AI इन इंडिया के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है।
हमें AI को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत AI डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया है। इसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। भारत में AI सेंटर्स ही एक्सेलेंस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 से पहले देश में सिर्फ 3 क्रियाशील अनुसंधान पार्क थे और 2014 के बाद 6 अतिरिक्त पार्कों की स्थापना की गई।
आज देश में इनोवेशन, नवाचार, नई नियुक्ति की प्रक्रिया, आत्मविश्वास की ये पद्धति इसीलिए संभव हो पाई है। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, जो विशेष करके युवा पीढ़ी के मन में एक नया उत्साह भरा है, राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने अनुसंधान को, अपनी मेधा को समर्पित करना, देश को विकसित भारत बनाने के समर्पित होने का ये एक मंच बना है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रेरित करना और अग्रणी तकनीक में अनुसंधान से व्यवसायीकरण में तेजी लाना है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। जिन क्षेत्रों का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दौरा किया उनमें इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के समीप नजफगढ़ नाला, शालीमार बाग स्थित शीश महल और हैदरपुर जल शोधन संयंत्र शामिल हैं। इस दौरान भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। अपने दौरे के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद सभी अधिकारियों को कार्य गुणवत्ता के साथ साथ समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
एक बड़ा प्रोजेक्ट इस मुनक नहर के दोनों तरफ सड़क बनाने का काम, मुनक नहर को सेव करने का काम, यहाँ से जितना पानी हमें मिल रहा है उसको पूरी तरीके से 100% रिसीव करते हुए उसके ट्रीटमेंट का काम, इन सारे विषयों पे आज संज्ञान लिया गया है और दिल्ली की जो पानी की समस्या है उसका 100% समाधान हो, दिल्ली की प्यास बुझा सके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे अच्छे से काम कर सके, इसके ऊपर डिटेल वर्किंग की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में उनके आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने रंजीत नगर से अपने निगम पार्षद अंकुश नारंग को दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। दक्षिण दिल्ली से भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी आज अपने क्षेत्र के अनेक विधायकों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह से मिले। इस दौरान उन्होंने दक्षिण दिल्ली से जुड़ी अनेक समस्याओं से श्री कुमार को अवगत कराया। श्री बिधूरी ने बताया कि DDA उपाध्यक्ष ने सभी समस्याओं को शीघ्र ही हल करने का आश्वासन दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में तकनीकी विकास की दिशा में सहयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रेरित किया। नई दिल्ली में आज MSME के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन अवसरों पर एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि MSME में विनिर्माण इंजीनियरिंग के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने और नए तकनीकी विचारों के साथ आने की क्षमता है। ये क्षमता भारत को नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सशक्त बना सकती है।
Under the leadership of Prime Minister Shri Modi, 5 lakh million ton by 2030. So I am quite hopeful. In some of the MOUs program, this has happened. We have given pilot project. Steel Ministry, we have given around 412 crores. And in shipping industry, around 200 odd crores for the pilot projects. So isliye humne standardization abhi shuru kiya hai, green certificate issue karne ke liye. Hum accreditation ka bhi program shuru kiya hai, certification bhi hum issue karte hai.
डाक विभाग और SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में 1,64,000 से अधिक डाकघरों के माध्यम से SBI म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए घर घर जाकर KYC सत्यापन सेवाएं उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार में वन पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज छतरपुर स्थित संजय कॉलोनी का दौरा किया और वहां नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ स्कूल की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और स्थानीय विधायक करतार सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान श्री सिरसा ने स्कूल प्राचार्य, अध्यापक और छात्रों से बातचीत की और स्कूल की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्कूल प्रशासन को आश्वासन दिया कि स्कूल का जो भी जल्द से जल्द निरीक्षण होगा वो करवाया जाएगा। मंत्री सिरसा ने डेरा गांव का दौरा कर वहां स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनकर जल्द ही उनका समाधान करने की भी बात कही। श्री सिरसा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सतर्कता विभाग ने बताया है कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता से भवन निर्माण की अनुमति देने के लिए 25,000 रूपये की रिश्वत ली थी। आरोपी पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के जफरपुर कला थाने में तैनात था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली और कोलकाता में बिल्डरों और बैंकों के बीच सांठगांठ की प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए हैं। आज न्यायालय ने की एक पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को 7 प्रारंभिक जांच शुरू करने और एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। दिल्ली एनसीआर सहित अन्य शहरों में भी आवासीय परियोजनाएं चलाने वाले बिल्डरों को की भी जांच की जाएगी। न्यायालय ने सीबीआई से अंतरिम स्थिति रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सेवा शुल्क नहीं लौटाने के लिए दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ये रेस्टोरेंट दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक फैसले के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क लौटाने में असफल रहे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत इन रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में इन रेस्टोरेंट को सेवा शुल्क की धनराशि लौटाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल नई दिल्ली में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए गए विजेताओं ने आज राजधानी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कल राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा कल अक्षय तृतीया से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई और चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। आकाशवाणी इस चारधाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और यमुनोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के पट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई को सुबह 6 बजे और बद्रीनाथ धाम के खुलने का प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक होगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। यात्रा से संबंधित एक रिपोर्ट भी कल से 4 मई तक हर दिन शाम 7:30 से 7:45 तक प्रसारित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
अभी खबर मिलने के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अलग अलग लिखे पत्रों में राष्ट्रीय एकता और संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष सत्र जल्द से जल्द आयोजित करने का आग्रह किया। उधर भाजपा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ये बताना चाहिए कि आतंकी हमले पर कांग्रेस का सामूहिक संकल्प क्या है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ चल रहा है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 4 ओवर में 1 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स 12 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। टीम ने अब तक 9 मैच खेले हैं जिसमें से उसने 6 में जीत दर्ज की है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स 7 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। कोलकाता ने 9 में से 3 मैचों में जीत दर्ज की है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। राजधानी में आज दिन में चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि शस्त्र कौशल और धार्मिक ग्रंथों की ज्ञाता भगवान परशुराम का आशीर्वाद सबके जीवन को उत्साह और शक्ति से भरपूर करे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस निर्धारित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। और राजधानी में आज चिलचिलाती धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी, लोगों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।